अभी नवरात्र का समय चल रहा है, कल दुर्गा पूजा का दिवस था, सभी लोग देवी की पूजा के लिए इधर उधर हैं, कई जगह कितने पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है, और कई लोग दुर्गा देवी की उपासना में इन दिनों बहुत मग्न हैं, नाना तरह के आराधना करते हैं, भेंट करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, मंत्र स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं, सोचते हैं कि दुर्गा देवी ही भगवान है और इनकी पूजा करने से, इनकी सेवा करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि वास्तव में दुर्गा देवी हैं कौन, उनका स्थान क्या है, और किस दृष्टि से हमें दुर्गा देवी को देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर भगवान कृष्ण की भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में जो धर्म है वो एक खिचड़ी बन गया है। खिचड़ी आप जानते हैं ना, सब चीजों का मिश्रण, हर दिन कोई नई देवी देवता निर्माण होते हैं। जो भी व्यक्ति आता है अपने मन में कहता है ये देवी वो देवता, कोई भी नाम निकालते हैं, बस उनकी पूजा हो जाती है। कहीं भी छोटा सा कोई मंदिर कोई निकाल देता है, कहता ये देवी फलाना देवी, कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं कुछ नहीं, लेकिन किसी ने शुरू कर दिया ये देवी, तो शुरू हो गया वो प्रथा, फिर पीढ़ियों पीढ़ियों से चलता रहेगा, सभी लोग फिर मानेंगे, 300-400 साल बीत जाएंगे, फिर लोग कहेंगे अरे हमारी परंपरा चल रही है, इसको कैसे तोड़ेंगे हम, तो ये सच्ची होनी चाहिए, हमें करना चाहिए। और अगर किसी सिनेमा बनाने वाले ने उस देवी के ऊपर सिनेमा बना लिया तो भी बात खत्म, तो सारे जगत भर में वो देवी की गुणगान होएंगे। लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि ये देवी वास्तव में कोई है क्या, ऐसे ये नाम की देवी कोई है क्या। अभी कौन जाने 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से ये भी है नहीं है, या किसी के कल्पना के से ये नाम निकाला है। अब तो ये भारतवर्ष में दुर्भाग्य से जो भी कुछ कोई भी कह देता है वो धर्म बन जाता है। यतमत ततपत, जिस तरह से कोई भी आदमी किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा करना चाहे वही ठीक, और जो हम पूजा कर रहे हैं वही सही है, वही सच्चा धर्म है। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं। तो इस तरह से कितना अज्ञान, कितना अंधकार, और लोगों को सच्चा धर्म क्या है इसका मालूम ही नहीं, इसका ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में दुर्गा देवी कौन है और उनका स्थान क्या है, ये समझने के लिए हमें जानना है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। आप तो हर प्रवचन में हर बार यहां आते हैं तो यही सुनते हैं, लेकिन ये सत्य है, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में निवास करते हैं, आध्यात्मिक जगत में। वो सच्चिदानंद जगत है जहां सब कुछ सनातन है, ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है, और भगवान वहां अपने अनंत भक्तों के संग निवास करके अनंत लीलाएं करते रहते हैं, अनादि काल से करते आए हैं, अनंत काल तक ही चलता रहेगा। यह है भगवान का सनातन धाम, जिसको कि वैकुंठ कहते हैं, आध्यात्मिक जगत। यही सत्य है, लेकिन इस आध्यात्मिक जगत के परे एक भौतिक जगत है जिसमें हम निवास कर रहे हैं। जो भी हम आकाश में चांद सितारे जो भी देखते हैं, ग्रह, ये सब इस भौतिक जगत के अंदर है। ये भौतिक जगत तो नश्वर है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब ये भौतिक सृष्टि का नाश हो जाता है, उस सृष्टि का मतलब मेरे आध्यात्मिक जगत का मेरे वैकुंठ धाम का नाश नहीं होता है। तो यह भौतिक जगत नश्वर है, क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान का धाम शाश्वत है, सनातन है। और भगवान के धाम में उनकी आध्यात्मिक शक्ति सब कुछ चलाती है। उस आध्यात्मिक शक्ति का नाम है योग माया। और वही योग माया जब इस भौतिक जगत में प्रकट होती हैं, इस भौतिक जगत के कार्य को संभालने के लिए, उनको महामाया कहते हैं। और ये महामाया है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी कौन है? दुर्गा देवी है भगवान की शक्ति। भगवान के दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति जिसको अंतर अंगा शक्ति कहते हैं, वो है योग माया, और दूसरी है भौतिक शक्ति जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है। तो ये भौतिक जगत भगवान ने किस लिए बनाया? उन जीवों के लिए जो कि भगवान के शरण में नहीं जाना चाहते, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, शांति से उनके धाम में रहकर सब भक्तों के साथ प्रेम से रहकर भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं, भगवान से विमुख होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने ये भौतिक सृष्टि बनाई है। और ये सारे जीव जो कि भगवान से विमुख हो चुके हैं, उनको यहां आने का मौका मिलता है। वास्तव में दुर्गा देवी इस प्रकृति को चलाती हैं भगवान के साथ में। दुर्गा देवी का उल्लेख भगवत गीता में भी आता है। कोई श्लोक बता सकते हैं जिसमें दुर्गा देवी का उल्लेख आता है भगवत गीता में? कितने सारे श्लोक हैं। नाम दुर्गा नहीं आता, लेकिन उनका उल्लेख तो कितने जगह है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो ये श्लोक आप सब जानते हैं। तो इस श्लोक में दुर्गा देवी कहां है, कौन से शब्द में? प्रकृति। भगवान पुरुष हैं और दुर्गा देवी प्रकृति हैं। प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति। तो दुर्गा देवी ये प्रकृति को चलाती हैं भगवान के साथ, भगवान के निर्देश के अनुसार। जैसे भगवान आदेश देते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम, चर और अचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है दुर्गा देवी के कार्य से, उनकी शक्ति से। लेकिन वो अकेले काम नहीं करती हैं, उनके साथ भगवान भी होते हैं। किस रूप में? काल रूप में। काल और प्रकृति के संयोजन से ये सारी चीजें होती हैं, सारी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ये दो शक्ति हैं, काल और प्रकृति। भगवत गीता में पांच प्रमुख विषय हैं जिनकी चर्चा भगवान करते हैं। आप बता सकते हैं ये कौन से पांच विषय हैं भगवत गीता में? एक तो है ईश्वर या भगवान, भगवान की चर्चा करते हैं। दूसरा है जीव, मतलब आत्मा के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। तीसरा प्रकृति, मतलब दुर्गा देवी। और चौथा काल, समय। और पांचवा कर्म। ये पांच चीजें हैं, पांच तत्वों के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में चर्चा करते हैं। इन पांच तत्वों में से केवल कर्म ये शाश्वत नहीं है, बाकी सारी चीजें शाश्वत हैं। तो ये शाश्वत शक्ति की अधिष्ठाता देवी हैं दुर्गा देवी। ब्रह्म संहिता में भी भगवान श्री ब्रह्मा जी बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन गोविंद श्री कृष्ण का नमन करता हूं जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा देवी इस भौतिक सृष्टि का कार्य संभालती हैं। छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, वो भगवान कृष्ण की छाया के बराबर है। छाया मतलब क्या है? जब हम हमारा हाथ रखते हैं, हाथ की छाया नीचे जमीन पे पड़ती है, तो जैसे हम उंगलियां हिलाते हैं वैसे छाया हिलती है, सही है? अगर हमने मुट्ठी बंद कर दी तो छाया में भी हम देखेंगे कि मुट्ठी बंद हो गई। ऐसा नहीं दिखने में आता कि हमने मुट्ठी बंद कर दी और छाया में मुट्ठी खुल रही है, ऐसा नहीं होता। ठीक उसी तरह से दुर्गा देवी भगवान की छाया के बराबर है, इस दृष्टि से कि जैसे भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं उस दृष्टि से वो इस प्रकृति को चलाती हैं। इसलिए दुर्गा देवी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है इस सृष्टि में। वो भगवान की सेविका हैं, भगवान की दासी हैं। श्रील प्रभुपाद एक सुंदर दृष्टांत देते हैं इन सारी चीजों को समझने के लिए। वो कहते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि छोटा बच्चा रोने लगता है कि मुझे ये कुछ अमुक खिलौना चाहिए, तो पिताजी क्या करते हैं, उसको एक जगह में रख देते हैं कहीं खेल के मैदान में वगैरह, और उसको एक खिलौना दे देते हैं। साथ में जो आया होती है, जो दासी होती है घर की, उसको वहां भेज देते हैं, चलो जरा देखभाल करो कि इधर उधर कहीं रास्ते में नहीं चले जाए, गाड़ी के नीचे नहीं आए, वो पार्क में उद्यान में जाओ, उसको खेलने दो, और अगर कुछ मस्ती करेगा तो उसको दंड दे दो। तो बच्चा चले जाता है वहां पर और खेलने लगता है, लेकिन बच्चा सोचता है कि दाई जो है या वो आया है वही सब कुछ है। तो ठीक उसी तरह से जो पिताजी वो भगवान है, बच्चे मतलब जीवात्मा, और वो खेल का मैदान भौतिक जगत है, वो दासी दुर्गा देवी, और वो खिलौना हम किन चीजों से खेलते हैं, यहां पर किन चीजों का भोग करने का प्रयास करते हैं। हम विषय इंद्रियों के विषयों को भोग करना चाहते हैं, हमारी आंख चाहते हैं सुंदर रूप देखें, हमारे कान चाहते हैं सुंदर कोई मधुर ध्वनि सुने, जिह्वा चाहती है कि हम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजनों को चखें, उनका स्वाद लें। तो ये सारे विषय जो हैं भोग करने के लिए, ये सारे हमारे लिए खिलौने हैं। तो हम यहां पर बद्ध अवस्था में हैं, हम जानते नहीं हैं कि वास्तव में ये सारे खिलौने ये सब कौन दे रही है, वो दाई दे रही है, जो आया है वो दे रही है, लेकिन हम उसी को हम सब कुछ समझते हैं। ये नहीं जानते कि वास्तव में आया भी है, उसको भी तनख्वाह मिलती है, यो भी सेवा कर रही है, आया के परे भी हमारे पिताजी हैं, और वो पिताजी ही सब कुछ देखभाल कर रहे हैं वास्तव में। उसी तरह से ये संसार के बद्ध जीव जो होते हैं दुर्गा देवी को ही सब कुछ समझते हैं, यही सब कुछ है, और भूल जाते हैं कि दुर्गा देवी के परे उनके स्वामी हैं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति छाया को ही सत्य समझ ले तो वो तो भ्रम में है। ठीक उसी तरह से अगर कोई दुर्गा देवी को परम समझे तो वो भ्रम में है। इसका मतलब ये भी नहीं कि दुर्गा देवी का हमें तिरस्कार करना चाहिए या उनकी निंदा करनी चाहिए, नहीं, वो तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा के लिए वो यहां पर जीव को बद्ध अवस्था में रख रही हैं। सृष्टि के कार्य में, सृष्टि के सृजन के कार्य में दुर्गा देवी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब एक स्त्री एक मां बच्चे को जन्म देती है तो दो तरह से वो बच्चे की सहायता करती है। एक तो अपने पेट में अपने गर्भ में उस बच्चे को बड़े होने के लिए या रहने के लिए स्थान देती है, बराबर है, और दूसरी तरह से मां बच्चे की का लाभ कैसे करती है, माँ के शरीर से जो पदार्थ हैं उन्हीं से बच्चे का शरीर बनता है, बराबर है, कोई गलती इसमें? तो ठीक उसी तरह से दुर्गा देवी ये भौतिक ब्रह्मांड में जो जगह है उसको उत्पन्न करती हैं, जिसमें कि ये सारे ग्रह लोक सब रह सकते हैं, और फिर हमारे शरीर को, इन ग्रहों को, लोकों को बनाने के लिए जो पदार्थ चाहिए, जो तत्व चाहिए, वो भी प्रदान करती हैं दुर्गा देवी। इस दृष्टि से देखा जाए तो दुर्गा देवी 84 लाख योनियों की मां है, माता दुर्गा मां, इसलिए उनका नाम कभी कभी अंबा रखा जाता है या जगदंबा। ये क्यों? क्योंकि दुर्गा देवी मां है, वो प्रकृति है, लेकिन प्रकृति अपने आप में निष्कार्यशील है, अपने आप में प्रकृति कुछ नहीं कर सकती जब तक कि पुरुष है। क्या मां अकेले बच्चे को जन्म दे सकती है? नहीं, पिता भी चाहिए। ठीक उसी तरह से ये 84 लाख योनि जो हैं, वो कैसे उत्पन्न हुए? ये 84 लाख योनियों की मां है दुर्गा देवी, और पिता कौन है? भगवान। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया तासा ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि 84 लाख योनियों का बीज प्रदाता मैं ही हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सीधे बीज प्रदाता नहीं होते, वो शिवजी के माध्यम से ये सृष्टि के निर्माण का कार्य करते हैं। देखिए शिवजी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। शिवजी का स्थान या उनकी सेवा केवल सृष्टि के संहार के समय नहीं होता, वो तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजन के समय भी शिवजी का स्थान रहता है। इसलिए दुर्गा देवी मां है और शिवजी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए वो पिता के बराबर हैं। लेकिन असली पिता कौन है? भगवान कृष्ण। इस तरह से दुर्गा देवी एक मां है हमारे, एक नहीं सारे ब्रह्मांड की मां है। वैसे हरेक ब्रह्मांड में दुर्गा देवी है, हरेक ब्रह्मांड में शिव जी हैं। कितने सारे ब्रह्मांड हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड। हरेक ब्रह्मांड में दुर्गा देवी हैं, शिव जी हैं। तो कितने शिव जी, कितने दुर्गा देवी हुए? अनंत कोटि। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक है, उनसे ये सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि दुर्गा देवी का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। दुर्गा देवी भगवान की सेवा में हमेशा रहती हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में ये कथा आती है। वेद व्यास जी, जिन्होंने कि सारे वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की रचना की है, वो अपने आश्रम में बैठे थे। वेद व्यास जी का आश्रम था हिमालय में, बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ के पास, और वहां बैठकर एक दिन वो चिंतन कर रहे थे कि अरे मैंने इतने सारे वेद पुराण शास्त्रों की रचना की, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत है, मैं संतुष्ट नहीं हूं अभी तक, इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत चिंतन करने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला, संशय तो था उनको कि क्या यह हो सकता है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसलिए शायद मैं असंतुष्ट हूं अभी तक। और ऐसे द्वंद्व की परिस्थिति में जब वेद व्यास थे, ठीक उसी समय उनको उनके गुरु श्रील नारद मुनि वहां पर पधारे, आकाश पथ से आते हुए भगवान का नाम का गुणगान करते हुए आए। जैसे ही नारद मुनि वहां आए, वेद व्यास खड़े हो गए, उन्होंने प्रणाम किया, नारद मुनि का स्वागत किया, उनको अच्छी तरह से बिठाया, उनकी उपासना की, और फिर नारद मुनि ने पूछा कि हे मुनिवर, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो चल रहा है, कुशल मंगल है? तो वेद व्यास जी ने कहा, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब आप जानते हैं, तो आप कृपया ये बताइए कि मेरे मन में जो इतने सारे शास्त्र लिखने के बाद जो असंतुष्टि है उसका क्या कारण है और ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। फिर नारद मुनि ने श्री वेद व्यास जी को सुंदर उपदेश दिया। इसका सार ये है कि उन्होंने बताया कि आपने वेदों के माध्यम से ज्यादा कर्म कांड की पद्धति बताई है, जिससे कि अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने से लोगों को इंद्रिय तृप्ति के साधन मिल सकते हैं, लोगों को ज्यादा भोगी बनाया है आपने, विरक्ति या वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के बजाय आपने भोग की भावना को प्रेरणा दी है, इसलिए आप अगर श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का वर्णन करेंगे तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे और जो लोग शास्त्रों को पढ़ेंगे सुनेंगे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो सुंदर उपदेश दिया, लंबा उपदेश था, कई कथाएं भी सुनाई नारद मुनि ने, निजी अपनी कथा भी सुनाई उन्होंने, और उसके बाद नारद मुनि चले गए आकाश पथ से होकर फिर से अपने ऊपर के लोक में चले गए। उधर वेद व्यास जी ने बहुत अच्छे ढंग से नारद मुनि के उपदेश को ग्रहण किया हृदय से, और फिर अपने आश्रम में जो कि शम्यप्राश नाम के स्थान पर है बद्रिकाश्रम में, वहां पर ध्यान में बैठे और शुद्ध मन से जब उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान किया तो उनको क्या दिखने में आया। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वेद व्यास जी प्रणिहिते सम्यक अमले पूर्ण शुद्ध हृदय से वो ध्यान करने बैठे थे, भक्ति योग से, सम्यक प्रणहिते मले भक्ति योगे न मनसी, अपने मन को उन्होंने भक्ति योग में लगाया, तब अपश्यत उन्होंने देखा, किसको देखा, पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उन्होंने अकेले श्री कृष्ण को नहीं देखा, श्री कृष्ण के साथ में कौन थी, मायाम चतद अपाश्रयम, माया देवी उनके साथ में दुर्गा देवी खड़ी थी और दुर्गा देवी के हाथ जुड़े हुए थे, भगवान की सेवा में वो खड़ी थी वहां पर। और ये शब्द प्रयोग किया है सुखदेव गोस्वामी ने, अपाश्रयम मतलब पूरी तरह से माया देवी या दुर्गा देवी भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में थी, वो उनके पूरी तरह से आश्रय में थी, अपाश्रयम। तो वेद व्यास जी का दृश्य का दर्शन देखिए, उन्होंने श्री कृष्ण और उनकी बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी का दर्शन किया अपने ध्यान में, और उन्होंने देखा कि किस तरह से दुर्गा देवी ऐसी चाल ऐसे जाल फैलाती हैं इस भौतिक सृष्टि में, जिस जाल में सारे जीव यहां बद्ध हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, शिकार होते हैं। इसलिए अगले ही श्लोक में, इसके बाद वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थं यत्कृतं चाभिपद्यते। वो कहते हैं कि ये जो मायां तजत अपाश्रयम्, ये जो माया है यया, इसकी वजह से सम्मोहितो जीव, सारे जो प्राणी हैं 84 लाख योनि जितने भी प्राणी यहां भौतिक जगत में हैं, वो बिल्कुल मोहित हो जाते हैं ये माया शक्ति की वजह से। आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम्, ये जो सारे प्राणी हैं ये सब आत्मा हैं और आत्मा होने के नाते शुद्ध हैं, आध्यात्मिक हैं, इनको वास्तव में ये भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु माया के प्रभाव में आकर, माया के वशीभूत होकर वो अपने आप को ये भौतिक जगत समझ, भौतिक सृष्टि समझ रहे हैं, भौतिक पदार्थ समझ रहे हैं, मैं ये शरीर हूं, इसी को माया कहते हैं। माया मतलब जो नहीं है वो माया, मैं तो आत्मा हूं, जब मैं अपने आप को शरीर समझने लगता हूं तो ये सबसे मूल भ्रम है, मोह है। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है माया देवी, और ये माया देवी सारे प्राणियों को अपने वश में कर लेती है, सब मोह में डाल देती है। दुर्गा या माया, ये दुर्गा शब्द का अर्थ, इसका विश्लेषण करना बड़ा अच्छा है। दुर्गा शब्द आता है दुर्ग से। दुर्ग का क्या मतलब है? किला। वैसे कई मतलब है दुर्ग के, वास्तव में अगर इसका विश्लेषण किया जाए, दुर्गा, दुर मतलब जो बहुत कठिन है, ग मतलब जाना, जिससे जाना बहुत कठिन है, मतलब जो दुर्ग होता है उसके अंदर प्रवेश करना बहुत कठिन होता है ना, इतनी लंबी लंबी दीवारें होती हैं, बड़े बड़े मजबूत दरवाजे होते हैं, इतने सारे सैनिक होते हैं ऊपर बैठे हुए, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। तो दुर्ग मतलब जिसमें आना जाना बहुत कठिन है, तो इसीलिए एक किला है। लेकिन दुर्ग शब्द का और एक अर्थ भी यह है, कठिनाई, संकट, मुश्किल। तो इसलिए इस जगत को भी दुर्ग कहा गया है, क्योंकि यहां पे संकट ही संकट है, दुख ही दुख है। बराबर है? दुखालयम अशाश्वतम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि यह संसार केवल दुख का आलय है, इसलिए इसको दुर्ग भी कहते हैं। और इस दुर्ग के भीतर सारे जो प्राणी हैं, 84 लाख योनियों के प्राणी, वो सब बद्ध अवस्था में हैं। जैसे हम देखते हैं हिंडल का जेल है, इतनी लंबी लंबी दीवारें, ऊपर ऊंची दीवारें हैं, और कोई आदमी इनको चढ़ के बाहर आना भी चाहे संभव नहीं है। यह भी एक किला है, उस किले के अंदर सारे प्राणी, सारे जो भी कैदी हैं, बद्ध हैं, बाहर नहीं निकल सकते। ठीक उसी तरह से ये भौतिक जगत को दुर्ग कहा गया है, जिसमें सारे जीव बद्ध अवस्था में हैं। और दुर्गा वो व्यक्ति हैं, वो स्त्रीलिंग, वो शक्ति हैं, जो कि इस दुर्ग की रखवाली करती हैं, वो देखभाल करती हैं इस दुर्ग का। और उनका काम है कि यहां जो भी प्राणी हैं उनको जेल के अंदर ही रखें, इस भौतिक जगत के अंदर ही रखें। और दुर्ग का नाम भी है कष्ट, तो दुर्गा का अर्थ यह भी है, एक दूसरा अर्थ, जो कष्ट देती है। मतलब दुर्गा देवी का काम ही है कष्ट देना। किनको कष्ट देती है? सबको। दुर्गा देवी के हाथ में कितने अस्त्र हैं, कई रूपों में उनके 8 भुजाएं हैं, कई 10 भुजाएं हैं, और हरेक हाथ में कोई ना कोई शस्त्र अवश्य रहता है। और खास करके जो त्रिशूल होता है दुर्गा देवी का, वो बहुत शक्तिशाली है। दुर्गा देवी के इस त्रिशूल से वो हरेक प्राणी के ऊपर आक्रमण करती हैं, प्रहार करती हैं। और ये त्रिशूल क्या है? ये 3 प्रकार के दुख, जिनका सामना हरेक प्राणी को करना पड़ता है, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, जो निसर्ग से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं, जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं, और जो दूसरे प्राणियों से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं। ये 3 तरह के कष्ट हर एक प्राणी को सहन करने पड़ते हैं, और ये दुर्गा देवी या माया देवी से आ रही हैं। इसलिए दुर्गा देवी वो भगवान की सेवा करते हुए बद्ध जीवों को बद्ध अवस्था में रखते हैं, और यहां से कोई नहीं निकल सकता है। माया देवी की शक्ति अपार है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, लेकिन अगर निकलना है तो केवल भगवान की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। वो कहते हैं कि ये जो मेरी माया शक्ति है, ये दैवी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है, और ये दुरत्यया है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। प्रापन्तिते माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आते हैं वो इस भवसागर के पार आसानी से जा सकते हैं, माया को पार कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी हम देखते हैं कि अगर हम किसी जगह जा रहे हैं और किसी पुलिसमैन ने, हवलदार ने हमको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगर हमारी पहचान डीआईजी या आईजी इंस्पेक्टर जनरल से है तो थोड़ा मोबाइल लगाएंगे, इंस्पेक्टर साहब देखिए ये हवलदार ने हमको गिरफ्तार किया है। अगर हवलदार को कहेंगे भाई हमें छोड़ दो, नमस्कार, माफ करो, नहीं, गिरफ्तार करेंगे, दंड मिलेगा। लेकिन अगर हमारी पहचान इंस्पेक्टर से है, वो इंस्पेक्टर जनरल से है या बहुत ऊंचे ऑफिसर से है, उनको फोन करेंगे, देखो ये समस्या है, हवलदार ने हमको पकड़ लिया है, तो फिर बोलेंगे हवलदार को फोन दे दो, हवलदार जरा छोड़ दो इनको, हां साहब छोड़ देंगे, तुरंत छोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से अगर हम दुर्गा देवी से मुक्त होना चाहते हैं, उनकी चंगुल से मुक्त होना चाहते हैं, तो दुर्गा देवी से प्रार्थना करेंगे हमें छोड़ दीजिए, वो कहेंगे नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे यहां जो कैदी हैं हिंडलगा जेल में, वो जेल के वार्डन के पास जाएंगे कि हमें छोड़ दीजिए साहब, हमें जाने दीजिए, बोलेंगे भाई हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम क्या है कि जो यहां आते हैं उनको बद्ध अवस्था में रखना, उनको अंदर जेल के रखना, वो मेरा काम है, तुमको यहां भेजा किसी और ने है, इसलिए जिन्होंने भेजा उन्हीं को निकालना पड़ेगा, वो अगर हमको आदेश देंगे तो हम तुमको जेल के बाहर निकाल देंगे। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा हम नहीं छोड़ सकते, कितना भी तुम मेरे पैर में पड़ो, पूजा करो हमारी, हम नहीं छोड़ सकते। बल्कि अगर कोई व्यक्ति प्रिजन वार्डन, जो जेल का वार्डन है, उसको ज्यादा खुश करेगा तो वो क्या करेंगे, अच्छा उसको कमरा दे देंगे, शायद कमरे में टीवी दे देंगे, फिर आदमी क्या सोचेगा, अरे इतना अच्छा है, सब ठीक ठाक है, जेल से निकलना ही क्यों चाहिए, यहीं पर रहेंगे, मुफ्त में खाना मिलता है, सरकार के मेहमान हो गए हम, यहां पर रहेंगे आराम से, ऐश करेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो अगर कोई ऐसी सुविधाएं जेल के वार्डन से लेता है तो जेल का वार्डन भी उसको धोखा दे रहा है। अगर जेल के वार्डन ने उसको अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया होता कि देखो ऐसे ऐसे करोगे तो मैं इस्तीफा ऊपर मैं लिख सकता हूं कि ये कैदी बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसको समय से पहले छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर केवल जेल के अंदर अच्छा अच्छा कमरा ढूंढते जाएगा वो व्यक्ति, तो वहीं रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जो लोग दुर्गा देवी की पूजा करते रहते हैं तो दुर्गा देवी उनको ऐश्वर्य भोग इत्यादि के साधन देती हैं, और ये एक प्रकार का धोखा है उनके प्रति, क्योंकि इन ऐश्वर्यों को, भोग के साधनों को प्राप्त करके वो जीव यहीं पर रहने की इच्छा रखते हैं। अरे इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतना भोग, गाड़ी, बंगला, ये वो, तो क्यों जाए भगवान का धाम किसने देखा, यही सब कुछ है, यही स्वर्ग है, तो इसी में रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। लेकिन ऐसे लोगों को भी कष्ट देती है दुर्गा देवी, उनका नाम ही है दुर्गा, दुर्ग देने वाली, कष्ट देने वाली। इसलिए अगर कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त होना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारं न श्रोष्यसि विनंक्षसि। वो कहते हैं मत चित्तः, अगर कोई व्यक्ति मुझे ही चित्त में रखता है, मेरा चिंतन मनन करते रहता है, मेरा भक्त बन जाता है, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी मतलब सारे कष्ट, नाना प्रकार के अड़चन इत्यादि, हर एक कार्य संपन्न करने में यहां अड़चन आते हैं, है ना, कुछ भी करना है कोई ना कोई अड़चन आती है। हम बहुत कुछ खाना चाहते हैं, खाने के बाद भी और खाना चाहते हैं, लेकिन पेट इतना भर जाता है, अड़चन है, नहीं खा सकते। हम बहुत कुछ भोग करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, या बूढ़े हो गए, या कितने सारे तकलीफें हैं, हर कदम पे यहां पे अड़चन है, और बीमारी, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, जगह जगह अड़चने हैं, दुर्ग। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्व दुर्गाणी तरिष्यसी, तुम इन सारे दुर्ग इन सारे कष्टों को पार करके तैर करके जा सकते हो। कैसे? मत प्रसादात, मेरी कृपा से। प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा, मेरी कृपा से तुम इसके पार होकर जा सकते हो। लेकिन मेरी कृपा कैसे प्राप्त होगी? भगवान बताते हैं मत चित्त, हमारे चित्त में केवल भगवान श्री कृष्ण को रखना है। लेकिन अगर हमने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं सुनी, अथ चेत त्वम अहंकारन न श्रोष्यसी, अहंकार की वजह से हमने भगवान की इस वाणी को नहीं सुना, तिरस्कार कर दिया भगवान के वाणी को। भगवान कहते हैं मत चित्त, चित्त में मुझे रखो, और हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, श्री कृष्ण क्या रखेंगे, हम संसार के भोग को रखेंगे मन में। तो अगर ऐसे भगवान की बात को नहीं मानेंगे तो भगवान कहते हैं विनंक्षसी, तुम खो जाओगे इस भौतिक जगत में। खो जाओगे मतलब नष्ट हो जाओगे, केवल अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में, जो कि अनादि काल से हम करते आए हैं, कभी इस लोक में कभी उस लोक में कभी इस योनि में उस योनि में। किसी को पता नहीं कि हमारे इतिहास क्या है, और किसी को पता नहीं कि हमारा भविष्य क्या होगा। कितने योनियों में शरीरों में लोकों में ग्रहों में घूम घूम कर हम आए हैं, यहां पर हम खो जाते। आत्मा एक बार भौतिक जगत में आ जाती है खो जाती है, कोई ढूंढ नहीं पाएगा आत्मा को, ये फलाना आत्मा कहां है। विनंक्षसी, खो जाओगे भौतिक जगत के जंगल में। इसलिए हमें दुर्गा देवी के प्रलोभन से आकर्षित न होकर हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह से भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, उनके शरण में नहीं जाते, तो उनके लिए दुर्गा देवी क्या करती है? दुर्गा देवी उनको बहुत कष्ट देती है। दुर्गा देवी, वैसे उनका वाहन क्या है कोई जानता है? सिंह। उनका वाहन एक सिंह है, सिंह के ऊपर सवार होकर वो चलती, हाथ में त्रिशूल अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। ये सिंह है रजोगुण और तमोगुण। और यहां इस भौतिक संसार में जो भी प्राणी हैं, खास करके मनुष्य, जो रजोगुण और तमोगुण से चेष्टा कर रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के ऊपर हम जीत पा लेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे, कभी नहीं हो सकता। भगवान की प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव है। और जो लोग इस तरह से भगवान के विमुख होकर भोग करने का प्रयास करते हैं, दुर्गा देवी काली के रूप में और अन्य रूपों में आकर ऐसे मनुष्य समाज में झगड़े और युद्ध इत्यादि ऐसी चीजें उत्पन्न करती हैं, जिससे कि सारे असुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं एक दूसरे को खत्म करके पृथ्वी का बोझ कम करते हैं। तो ये सब माया देवी या दुर्गा देवी का खेल है। वैसे देखा जाए ज्यादा से ज्यादा जो भी ये उपासक दुर्गा देवी के हैं, ये सब भौतिक चीज के लिए ही दुर्गा देवी के पास जाते हैं। बहुत कम शायद ऐसे देखने में आएगा कि कोई दुर्गा देवी के पास जाकर कुछ मांग नहीं रहे हैं। धनम देही, रूपम देही, गृहम देही, मारुति गाड़ी वाहनम देही, 50 सेंटीमीटर कलर टीवी देही, ये देही वो देही, ये हमको दो, ये दो वो दो, यही बस इतने लंबे लिस्ट लेकर जाते हैं दुर्गा देवी के पास। तो ये वास्तव दुर्गा देवी भी सोचती हैं कि कैसे हमारे उपासक हैं, ये केवल हमारे पास यही चीजों को मांगने के लिए आते हैं। और कई लोग भौतिक धन के प्राप्ति के लिए लक्ष्मी देवी का फोटो रखते हैं दुकानों में इत्यादि, और फिर उनको धन मिलता है और सोचते हैं कि ठीक है भगवान की भक्ति नहीं करें, लक्ष्मी देवी की भक्ति पूजा करेंगे तो हमको सब मिल जाएगा, धन मिल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण के भगवान नारायण के भक्त नहीं होते उनको जो धन मिलता भी है अगर मिले भी तो लक्ष्मी देवी नहीं देती है उनको, उनको तो उनके पास लक्ष्मी देवी जाएंगे ही नहीं, उनको धन देती है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी और लक्ष्मी देवी में संबंध क्या है? दुर्गा देवी लक्ष्मी देवी के भौतिक विस्तृत रूप है। लक्ष्मी देवी का संबंध केवल भक्तों से होता है, जो नारायण की सेवा करती हैं तो लक्ष्मी देवी उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहती है। जैसे सुदामा के साथ हुआ, सुदामा के पास कुछ नहीं था लेकिन जब रुक्मिणी देवी ने देखा कि मेरे पति श्री कृष्ण जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं वो इस गरीब ब्राह्मण की ऐसी सेवा कर रहे हैं, उनके चरणों को दबा रहे हैं, चरणों को दूध से पानी से धो रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं, सर पे छिड़क रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, चामर उनको से हवा दे रहे हैं, उनको प्रसाद दे रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं, और इतना ही नहीं उनका जो पुराना जो पोहे का कण है वो भी खा रहे हैं जो कि द्वारकाधीश के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को चाहिए कि शानदार कुछ भोजन ले, और ये पोहा वो भी इतने दिन पुराना वो कृष्ण खाएंगे? और कृष्ण ने जब उसका सेवन किया इतने खुश हुए श्री कृष्ण, संतुष्ट हुए, और दूसरी बार जब खाने जा रहे थे तो रुक्मिणी देवी ने हाथ रोका और कहा कि हे प्रभु अभी और मत कीजिए क्योंकि ये आपके लिए उचित भोजन नहीं है। आपने एक कण इस ब्राह्मण से लिया है तो अभी इसको इतना ऐश्वर्य मिलेगा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि रुक्मिणी देवी कौन है? लक्ष्मी देवी है। इसलिए रुक्मिणी देवी ने फिर सारे ऐश्वर्य सुदामा को दे दिए, और जब सुदामा घर वापस पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? शानदार महल, इतने सारे नौकर चाकर, उनकी पत्नी को पहचाने ही नहीं, इतने सुंदर वस्त्र गहने ये वो। तो सुदामा बड़े आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा ने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को कुछ पूछा नहीं था कि मुझे चाहिए धन चाहिए कुछ दे दो, उनकी पत्नी ने उनको इस हेतु भेजा था। लेकिन सुदामा ने सोचा मैं यहां आकर कृष्ण के सामने कोई भौतिक चीज मांगू ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, केवल कृष्ण का दर्शन करना कृष्ण का संग प्राप्त करना बस इसी से सुदामा संतुष्ट थे। इसलिए जब लक्ष्मी देवी देखती हैं कि कोई व्यक्ति मेरे पति नारायण विष्णु या कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और इस भक्ति की वजह से वो धन को संभाल सकते हैं तो फिर लक्ष्मी देवी सोचती हैं चलो मेरी नारायण की सेवा के लिए मैं इनके घर में जाके निवास करती हूं, तो उनको बहुत धन देते हैं। कभी कभी भगवान अपनी इच्छा से अपने भक्त से धन छीन भी लेते हैं। यस्य हम अनुग्रामी हरिष्य तद्धनम शनै, तो भगवान अपने ही तरीके से सोचकर अपने भक्त की भलाई करते हैं। लेकिन जो अभक्तों के पास धन होता है वो लक्ष्मी देवी की भेंट नहीं है, वो दुर्गा देवी की भेंट है, माया की भेंट, जिससे कि वो व्यक्ति इस संसार के चंगुल में और भी सख्त अवस्था में फंस जाएगा। तो दुर्गा देवी का भेंट क्या है? और एक रस्सी से बांध लेना उस व्यक्ति को। लेकिन लक्ष्मी देवी का भेंट क्या है? उसको मुक्त कर देना। यह है अंतर लक्ष्मी देवी और दुर्गा देवी में। कभी कभी देखा जाता है कि कई लोग काली की पूजा करते हैं क्योंकि दुर्गा देवी का और एक रूप है काली, और ये जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं माया शक्ति के इस घोर रूप को उग्र रूप को इसकी सेवा करना पसंद करते हैं। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि बंगाल में थोड़े साल पहले भी ऐसे डाकुओं के गैंग होते थे जो केवल काली की उपासना करते थे अच्छी तरह से, क्योंकि जानते हैं कि शायद काली उनके अलग अलग योजनाओं के ऊपर आशीर्वाद दे दे, उनको सफलता दे दे। लेकिन ये लोग कभी भी विष्णु के मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि विष्णु उनके ऐसे खराब कार्यों के लिए आशीर्वाद कभी नहीं देंगे, तो इसलिए काली की उपासना करते थे। और काली की उपासना के नाम में कितने सारे पशुओं को बलि चढ़ाना, पशुओं को काटना। कभी कभी हम देखते हैं, बारहवीं भी पढ़ने में आता है, किसी गांव में किसी देवी के लिए एक बच्चे को बलि चढ़ा दिया, किसी आदमी को बलि चढ़ा दिया। ये सब देवी के पूजा के नाम में चलता है। श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंध में बताया जाता है कि जो व्यक्ति मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मैं समाज में बड़ा आदमी हूं, धनी हूं, धार्मिक हूं, वो ऐसे दुर्गा पूजा, काली पूजा के नाम में पशुओं को बलि चढ़ाता है, ऐसे लोगों के लिए एक खास नरक है। नरक लोग विशेष उनके लिए रिजर्व्ड है टिकट, खास ऐसे लोगों के लिए डब्बा है। जैसे कभी कभी रेलवे ट्रेन में हम देखते हैं, यहां से जब तिरुपति एक्सप्रेस समझ लीजिए, हरिप्रिया एक्सप्रेस तिरुपति जा रही है, हैदराबाद के लिए अलग डब्बा रहता है ना। तो उसी तरह से अनेक नरक लोक है, हर एक नरक लोक में अलग अलग तरह के लोगों के लिए रिजर्वेशन रहता है। एक प्रकार का पाप आदमी करे, एक तरह के नरक लोक में जाएगा। तो इस तरह से गलत कार्यों से पशु को बलि चढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को विशेषण नाम के एक नरक लोक में भेजा जाता है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी पांचवें स्कंद में परीक्षित महाराज को बताते हैं। तो आजकल ये जो गोंधड़ वो सब चलता है, क्या है, सब उसी लोक में जाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि ये सब, अगर आप ऐसे बकरी बलि ये वो सब बलि चढ़ाने वाले हैं, केवल सोचेंगे ये परंपरा है, ये है वो है, तो आपकी गति भी वैसे ही होगी। वास्तव में ये तो बहुत क्रूर काम है, बहुत बड़ा पाप है ये। हमारे भक्त कोल्हापुर के पास रामनवाड़ी नाम के एक गांव में, राधानगरी तालुका में, वहां प्रचार कर रहे हैं। और वहां परसों ही हमें पता चला, बहुत सुंदर घटना हुई। वहां के लोग अनादि काल से, मतलब वो सारे इलाके में, यहां भी जैसे है वहां भी वैसे, उनकी परंपरा कई पीढ़ियों से चलती आ रही है कि खास करके नवरात्र के समय बहुत सारे पशुओं को काटते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो जब से भक्त गए तो वहां से प्रचार आरंभ हुआ, नाम संकीर्तन चल रहा था। और उस गांव में थोड़े वारकरी लोग भी हैं जो विट्ठल की पूजा करते हैं, उनको भी ये पसंद नहीं था करना, लेकिन क्या करें, सारे समाज में एक प्रथा है, वो अकेले खड़े नहीं हो सकते। तो हमारे भक्तों के प्रचार करते 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 जैसे नाम संकीर्तन प्रचार इत्यादि हुआ, इतने सारे छोटे 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 बच्चे अभी संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, कितने नवयुवक भी जप करते हैं, कितनों ने मांस खाना छोड़ दिया है, एक परिवर्तन हो गया है। और जब ये समय आया, ये नवरात्र का समय, तो थोड़े लोग हमारे भक्तों के पास वहां आए कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब ये सब लोग बोलेंगे कि इतने साल से है, चल रहा है, क्या करना चाहिए। फिर हमारे भक्तों ने कहा, नहीं, आपको पता चल गया है शास्त्रों में क्या लिखा है, अभी आपको पक्का रहना है। गांव में जितने भी कोई भी आदमी कुछ भी क्यों ना बोले, आपको अटल रहना है। तो गांव की सभा बुलाई गई, तो वहां के जो प्रमुख लोग हैं उनमें से थोड़े भक्त भी बने, वो भी बड़े जोर से कहने लगे, नहीं, हम नहीं काटेंगे इस साल से, आज ये प्रथा बंद होने वाली है। तो थोड़े लोगों ने कहा, क्या ये तो प्रथा है, इतने सालों से चलती आ रही है, देवी को हम ये देते हैं, तो जंगल में और कोई ग्राम देवी है, और कोई है, और कोई है, सबको हम बलि चढ़ाते हैं, हम इसको कैसा रोक सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी बहुत समझाया, फिर हमारे भक्तों को बोला कि आप भी कुछ बोलिए। तो हमारे भक्त ने कहा कि इतनी और परंपराएं चलती आती थी, वो आपने क्यों नहीं पालन किया, केवल इस परंपरा को क्यों पालन कर रहे हैं, और इतनी अच्छी चीजें जो आपके बुजुर्ग करते थे वो आप नहीं करते, केवल जो बलि चढ़ाने का काम है उसको ही आपने स्वीकार किया। और फिर उन्होंने बताया कि ये कितना बड़ा पाप होता है, केवल हमारे संतुष्टि के लिए किसी प्राणी को, बकरी को, इसको उसको बलि चढ़ाना कितना बड़ा पाप है। और इस तरह से वो पूरी तरह से मान गए। लेकिन बात ऐसी हुई कि उन्होंने कहा, हमें कौल करना, क्या मानते कौल, कौल वो कुछ करते हैं। वैसे भक्तों की इच्छा नहीं थी कि हमें कुछ करना है नहीं करना है, इसके लिए हम शास्त्रों के ऊपर ज्ञान आधारित करते हैं, किसी कौल उसके ऊपर नहीं। लेकिन क्या करें, उनकी भावना ऐसी थी कि कम इतना तो करके देखें भगवान क्या बोल रहे हैं। और दोनों बार यह कौल करने से यह निर्णय हुआ कि बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। तो उस दिन से सारे गांव में हर एक व्यक्ति ने निर्णय किया कि आज से हमारे गांव में कभी भी बलि नहीं चढ़ेगा। तो देखिए कितना बड़े परिवर्तन एक गांव में, थोड़े भक्त, दो तो तीन भक्त वहां जाने से कितना परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आप सब भी जहां भी जाएंगे अपने गांव में, आप भी ऐसे प्रचार कीजिए। आपको भी बताना चाहिए कि इतना बड़ा पाप जो है इसका फल क्या होता है। जितने ज्यादा ऐसे पशुओं की हत्या होती है, ये पाप सबको भुगतना पड़ता है, सारे समाज को भुगतना पड़ता है। इसलिए बहुत भयंकर चीज है, ऐसे अवश्य हमें नहीं करना चाहिए। केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके, फिर सारे समाज में सुख और शांति निर्माण हो सकती है। लेकिन जो लोग इस तरह से घोर अत्याचार पाप करते हैं, तो दुर्गा देवी काली के रूप में आके तहस नहस कर देती है। प्रभुपाद बताते हैं एक तात्पर्य में श्रीमद् भागवत के, कि बंगाल में और कई अन्य जगह में भी दुर्गा देवी का एक रूप है काली, उनका एक उग्र रूप अक्सर दिखाई पड़ता है। काली देवी ने एक हार पहना हुआ है। किस चीज का हार? खोपड़ियों का हार, है ना, खोपड़ियों का हार पहना हुआ है, माला, और एक हाथ में एक खोपड़ी है और दूसरे हाथ में खड़गा। खड़गा मतलब जो जिससे वो सर काटती है सर, और जीभ बाहर करके खड़ी है। बड़ा खतरनाक रूप, उग्र रूप, कोई देखे भी तो डरे। तो कभी कभी ऐसे होता है कि इतने सारे भौतिकवादी लोग जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, काली की दुर्गा की पूजा करते हैं और ऐसे घोर अत्याचार वगैरह करते हैं, कभी कभी काली भी, काली देवी इतनी हैरान हो जाती हैं, उनके लिए असहनीय हो जाता है, फिर अपने ही भक्तों को उठकर मार देती है। और श्रीमद् भागवत में भी एक ऐसे प्रसंग आता है। आपने भरत महाराज का नाम तो अवश्य सुना होगा। भरत महाराज, जिनके पीछे ये देश का नाम है भारत, महाराज ऋषभदेव के पुत्र, वो बड़े महान भक्त थे। लेकिन ये कहानी तो पूरी हम बताएंगे नहीं, इस वक्त कहना इतना काफी है कि उनके जीवन के अंत में उन्होंने एक हिरण का स्मरण किया और हिरण का जन्म अगले जन्म में उनको मिल गया। लेकिन इस बार बहुत सावधान रहे और इसके बाद वाला जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर में मिला। लेकिन भगवान की कृपा से पूर्व जन्मों की स्मृति इनको थी, तो उन्होंने ठान लिया कि इस बार हम माया के चंगुल में नहीं फंसने वाले, हम निरासक्त रहेंगे, केवल मन ही मन भगवान का चिंतन करते रहेंगे। और उनका नाम रहा जड़ भरत। वो नाटक करते थे कि मैं एक पागल व्यक्ति हूं, गूंगा बहरा, थे सबसे बुद्धिमान, सबसे अकलमंद, सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन ढोंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो संसार के माया में फंसना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने ऐसे ढोंग किया तो सारे लोगों ने सोचा कि वास्तव में ये बुद्धू है और उनसे ऐसे ही बर्ताव करने लगे। लेकिन उन्होंने कुछ खराब नहीं माना, बस अपने मन ही मन में मस्त थे भगवान श्री हरि का स्मरण करते करते। एक बार ऐसे हुआ कि एक डाकुओं का गैंग था जो पास में कहीं था। जो डाकुओं का जो प्रधान था, नेता, उसको एक पुत्र चाहिए था। तो उसने सोचा कि हम काली को बलि चढ़ाएंगे हमारे पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो एक ऐसे मनुष्य का बलि चढ़ाना चाहिए जो कि एक पशु के तुल्य है। बुद्धिमान आदमी को बलि नहीं चढ़ाया जाता, एक ऐसे पशु को, मनुष्य को लाना चाहिए जो पशु पशु के समान है। और जिस व्यक्ति को ऐसे उन्होंने लाया था वो भाग के चला गया था। और ये अन्य जो डाकू थे उसको ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रहे थे, अचानक उन्होंने जड़ भरत को देखा। जड़ भरत दिखने में बड़े हृष्ट पुष्ट थे, आराम से अपने खेत में बैठे थे रात में, खेत की रखवाली करने के लिए, क्योंकि कई जंगली जानवर इत्यादि आते हैं खेत में, तहस नहस कर देते हैं। तो रखवाली करने के लिए उनके भाइयों ने उनको बैठाया था। तो जड़ भरत बैठे थे और इन डाकू ने देखा, सोचा हाँ ये आदमी पशु की तरह है भी हट्टा कट्टा, चलो उसे उठा के ले आओ। तो झड़बड़ आए, जहां कोई ले जाता था वहां जाते थे, तो उसको ले आकर अपने नेता को दिखाया। नेता ने बोला अरे वाह ये तो बढ़िया है, बलि चढ़ाने के लिए तो श्रेष्ठ है। तो उसको नहलाया गया, फिर अच्छे श्रृंगार किया गया, गहने कपड़े ये वो सब पहनाकर चंदन वगैरह सब लगा के देवी के सामने रखा गया, काली के सामने। और फिर एक डाकू ने पुरोहित की भूमिका निभाई, कोई मंत्र ये वो सब बोलना शुरू किया, और फिर लंबा तलवार लिया हाथ में, और फिर वो जड़ भरत की गर्दन काटने ही वाले थे। उस समय काली देवी सोच रही थी ये क्या लोग है, ये मेरे भक्त हैं कि क्या, इतने असुरी प्रवृत्ति के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, और जड़ भरत भगवान कृष्ण के इतने शुद्ध भक्त, और ये भी मासूम है, इसकी कोई भूल नहीं है, इसको ले आकर मेरे को बलि चढ़ा रहे हैं, ये इतने मूर्ख लोग हैं मेरे भक्त, मेरे तथाकथित उपासक। तो क्या हुआ, एक बहुत अद्भुत घटना हुई, काले की मूर्ति में विस्फोट हो गया, टूट गई मूर्ति, और मूर्ति के अंदर से स्वयं काली आई बाहर, और जो इस डाकू के हाथ में तलवार था उसको छीन ले, उसकी गर्दन काट ली, और सारे जितने भी डाकू थे उन सारे डाकुओं के गर्दन काट दिए, सर काट दिया, और काली के साथ उनकी सारी और सहेलियां थी, उनकी सेविकाएं, उनकी दासी, सब उनके जैसा ही रूप, और सब उनका खून पीने लगे, वो सब जो भी डाकू थे जोर जोर से हंसना, जीभ बाहर निकालना, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल, भयानक दृश्य। जड़ भरत को कुछ नहीं हुआ, वो तो कृष्ण का चिंतन करते बैठे थे। और फिर काली और इनकी सहेलियों ने क्या किया, उनका सर लेके उससे खेलने लगे, सब बॉल की तरह, गेंद की तरह, क्योंकि काली को इतना क्रोध आया था, ये मेरे उपासक कैसे है, ये वो भी शुद्ध भक्त को ऐसा कष्ट दे रहे हैं। तो फिर इस तरह से जड़ भरत को काली ने बचाया। कहने का मतलब है कि दुर्गा देवी, काली देवी, चंडी, ये वो अलग अलग रूपों में जब दुर्गा देवी प्रकट होती हैं, अलग अलग मूर्ख लोग ऐसे पाप के लिए उनकी इस तरह से उपासना करते हैं, लेकिन दुर्गा देवी को भी प्रसन्न नहीं है, पर पसंद नहीं है ये। दुर्गा देवी वास्तव में कब प्रसन्न होंगी, जब हम उनके ही स्वामी श्री कृष्ण के शरण में हम जाएंगे। दुर्गा देवी ने कृष्ण लीला में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको याद है कि जब कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो उन्होंने योग माया को बुलाया और कहा कि आप प्रकट होना मेरे पहले, देवकी के सातवें गर्भ के रूप में आप प्रकट होना, और फिर योग माया प्रकट हुई, और फिर जब वो प्रकट होकर कंस ने पकड़ा, तो कंस ने जब मारने का प्रयास किया तो उस समय वो आकाश में जाकर अपने दुर्गा का रूप धारण करके कहने लगी हे मूर्ख, तुम क्यों इस मासूम स्त्री को कष्ट दे रहे हो, तुम्हें मारने वाला व्यक्ति कहीं और जन्म ले चुका है। वैसे उसके पहले जब श्री कृष्ण ने योग मायों को आदेश दिया तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था योग माया को कि तुम जब इस भौतिक जगत में प्रकट हो जाओगी तो इस जगत के लोग तुम्हें अनेक नामों से पुकारेंगे, जैसे अंबिका, ईशानी, चंडी, माधवी, वैष्णवी इत्यादि, और तुम पूजी जाओगे ऐसे व्यक्तियों से। आज भी हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग प्रांतों में दुर्गा देवी के अलग अलग नाम हैं, जैसे कलकत्ता में उनको काली कहते हैं, कटक में भद्रकाली, अहमदाबाद में भद्रा, बंबई में क्या कहते हैं, मुंबा देवी, इसलिए मुंबई, मुंबई शहर कहां से नाम आता है, मुंबा देवी। तो इस तरह से दुर्गा देवी अलग अलग नामों से जानी जाती हैं और उनकी उपासना इतने सारे लोग करते हैं, लेकिन सब अज्ञान में हैं, दुर्गा देवी का स्थान क्या है वो नहीं जानते, इसलिए दुर्गा देवी भी खुश नहीं होती हैं। तो अगर हमें